तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषये गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष चित्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणा
परसों राधाष्टमी है, ब्रज में आज छठ है, बलदेव छठ। हम गौड़ीय वैष्णव के अतिरिक्त बाकी सब लोग ब्रज में बलदेव जी का जन्म आज के दिन ही मनाते हैं। वी हैव डन द ऑब्जर्व द बर्थडे ऑफ बलदेव प्रभु ऑन पूर्णिमा, but everywhere in Braj, all Brajvasi and others, they observe Baldev Chhat today, and tomorrow all will observe Lalita birthday, Lalita Saptami. But if we are observing Lalita Saptami tomorrow and day after tomorrow, then only one day, एक दिन की छोटी बड़ी होती है, किंतु ललिता जी राधा जी से 27 दिन बड़ी हैं, फिर इसका कैसे समन्वय होगा, कैसे समन्वय किया जाए? तो किंतु ब्रज में ऐसी ही रीति है, ऐसा ही माना जाता है, तो किसी प्रकार से समन्वय करना पड़ेगा। जे कैसे वो कल ललिता सप्तमी है और परसों राधाष्टमी है। राधाष्टमी तो ठीक है, राधाष्टमी के लिए सभी लोग एक ही दिन काट देते हैं, तो राधाष्टमी हम लोग बड़े उत्सव से मनाएंगे। विभिन्न जगहों से चाव आएंगे, राधिका जी के लिए श्रृंगार की सामग्री आएगी, उनके लिए उपहार अलंकार भूषण कपड़े लत्ते सब आएंगे। उस दिन हम लोग दोपहर में अभिषेक करेंगे। कोई कोई लोग राधाष्टमी के दिन में उपवास भी करते हैं। समवन दे ऑब्जर्व फास्टिंग ऑन राधा बर्थडे, बट वी डोंट। हम लोग दोपहर तक मान करके दोपहर के बाद में राधा जी का भोग लगा करके सबको प्रसाद देते हैं और बांटते हैं। यदि राधा जी शक्ति तत्व हैं, गुरु जी कहते थे हमारे, यदि शक्ति का उपवास किया जाए तो गुरु भी शक्ति है, गुरु के दिन भी उपवास करना पड़ेगा। गदाधर जी शक्ति हैं और रूप गोस्वामी भी रूपमंजरी शक्ति हैं, तो सारे जितने वैष्णव हैं सारी शक्ति हैं, तो एक दिन ऐसा नहीं बचेगा जो उपवास न किया जाए, तो फिर कैसे होगा, आदमी जीवन धारण कैसे करेगा? इसलिए शक्ति के लिए उपवास नहीं है। हाँ, जन्म तक कर सकते हैं, इसके बाद में उनका अभिषेक करके और फिर प्रसाद इत्यादि उनको दे करके हम लोग पा सकते हैं, तो हम लोग इसी तरह से करते हैं। दोपहर में राधिका जी का, सवेरे उनका जन्म हुआ भोर 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। शी हैज टेकन बर्थ इन रावल और इन बरसाना एट अबाउट इन ब्रह्म मुहूर्त 4:30 एम। सो एट वंस इट कैन नॉट बी डन अभिषेक। ब्रजवासी लोग दूध इत्यादि लाएंगे, घी लाएंगे और सब चीज़ें ले आएंगे, उपहार लाएंगे। जब सुनेंगे जो जन्म हुआ तब तो वो स्नान करके वृषभानु महाराज स्नान करने जा रहे थे वर्ष रावल में। उन्होंने देखा जमुना नदी में बहुत से कमल फूल खिले हुए हैं, शतदल कमल हैं, और उसके ऊपर में एक छोटी सी सुंदरी बालिका जो आज ही जिसका जन्म हुआ और उसी में अपने पैरों को कभी चूस रही है, किलकारी मारती है, कभी हंसती है, कभी रोती है, तो इस तरह से वहाँ पर है। उन्होंने उसको उठा लिया बड़े लाड़ प्यार से और घर ले आए। घर ले आने के बाद में उन्होंने कृतज्ञा जी की गोदी में दिया, तो वो करते करते तो फिर समय लगेगा, फिर स्नान करवाया होगा, अभिषेक होगा अपने गर्गाचार्य को या शांडिल ऋषि इत्यादि को बुलाए होंगे, और करते 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 बधाइयाँ बजी होंगी, बधाइयों का कीर्तन हुआ होगा। इस तरह से दोपहर तक उत्सव चला और इसके बाद में सोहर का कोई प्रश्न ही नहीं है। सोहर जानती है सुत का गृह, सुत के आग्रह की तो जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ तो प्रकट हुई, इसलिए सुत का आग्रह के देर इज नो नीड दैट देर वॉज एनी थिंग अनऑस्पिशियस। ओ शी वॉज ऑन द लोटस फीट, लोटस फ्लावर्स, सो शी नेवर केम फ्रॉम द ओम्ब ऑफ हर मदर। सो वी विल डू लाइक दिस, अप टिल मिड डे वी विल ऑब्जर्व उपवास एंड देन ऑल विल कम एंड वी विल डू अर्चन अभिषेक एवरीथिंग एंड देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद एंड इन द इवनिंग वी विल सी सो मेनी थिंग्स, बधाई कीर्तन एंड ऑल दिस। हम लोग बधाई के कीर्तन इत्यादि होंगे दर्शन। उनका जन्म दो जगहों में हुआ, कल्प भेद से। वर्तमान जो अभी चल रहा है द्वापर युग के अंत में, यह रावल में हुआ। ओ एनीवन कैन ट्रांसलेट, यू कैन ट्रांसलेट आफ्टर माई क्लास व्हेन आई विल टेल यू, तो यू शुड नोट डाउन व्हाट आई एम टेलिंग। तो रावल में और कल्प भेद से कभी बरसाने में वृषभानु कुंड में उन्होंने पाया, और कभी कभी कृतिका के गर्भ से भी कभी कभी जन्म ग्रहण करती हैं, जैसे कि यशोदा के गर्भ से कृष्ण जन्म ग्रहण करते हैं। ये कल्प भेद से यह सभी होता है। सबसे पहले जिक्र आता है कि जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ उसी समय से नारद जी सोच रहे हैं कहीं नहीं कहीं पराशक्ति का भी जरूर जन्म हुआ होगा, इसलिए उसी समय से ढूंढने लगे, और ढूंढते 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 वो पहुंचे वृषभानु महाराज जी के राजभवन में। उनसे पूछा आपको कोई संतान पैदा हुई? उन्होंने कहे हाँ हमको तो संतान पैदा हुई, ये मेरा लड़का श्रीदाम है। कहे अभी अभी दो चार दिनों के अंदर में कोई लड़की या और कोई संतान हुई? कहे हाँ एक बेटी हुई, मैं उसको दर्शन करना देखना चाहता हूँ और उसका रेखा और इसे उसका कुंडली बना करके और आपको देना चाहता हूँ, उसका स्वस्ति वाचन भी करूँगा। इसलिए वे ले गए। जब वहाँ पर गए तो राधा जी को छोटी सी बच्ची को देख करके देखा जी ये तो पराशक्ति लादनी शक्ति स्वयं राधा जी हैं। उन्होंने थोड़ा सा उनके पिता जो वृषभानु जी को कहा कि जाओ घर से अच्छत चावल दुर्वा चंदन जल और सब चीज़ें लाओ, हम इसको आशीर्वाद देंगे। और जब वो चले गए तो उन्होंने स्तव स्तुति आरंभ किया। उनके स्तव स्तुति से ललिता विशाखा जी साथ ही साथ राधा जी के साथ में प्रकट हुई। तब ये हाथ जोड़ करके और आंख बंद करके उनका पूरे रूप का ध्यान करने लगे। ललिता जी ने कहा जी अभी ये अंतर ध्यान हो जाएंगी, इसलिए जो कुछ प्रार्थना करना है जल्दी से कर लो। वो नित्य ही है, तो ललिता जी तो प्रकट हो सकती हैं साथ ही साथ। 27 दिन तो बड़ी है ना, 27 छोटी नहीं, यही तो गड़बड़ है। 27 दिन पहले बड़ी हैं तो, और नहीं होने से वो नित्य हैं, और 27 दिन बड़ी हुई भूल गए। श्रीमती राधिका जी प्रकट हो गई किशोरी रूप में, वही छोटी सी बालिका किशोरी रूप में हो गई। तो उन्होंने वो ध्यान लगाना छोड़ करके कुछ प्रार्थना करने लगे, और इतने दिनों इतने देर में वो अंतर ध्यान हो गई। अपना रूप अंतर ध्यान करके छोटी सी बच्ची हो गई। इसमें इतने में विश्वभानु महाराज वो सब सामान लेकर के पहुँचे। अब उनको देखने दिखलाने के लिए उनका वो आशीर्वाद इत्यादि करने लगे, और उसका भविष्य इत्यादि भी ये सब बतलाने में लग गए। तो ये तो वहाँ पर हुई। और इसके बाद में नारद चले गए गोवर्धन की तलहटी में, और वहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड और गिरिराज गोवर्धन नगर उसके दोनों के बीच में नारद एक कुंड है, वहीं पर तपस्या किया लाखों वर्षों तक, और फिर राधा जी का दर्शन किया। तो उनको नारदी गोपी का रूप मिला। सबसे पहले एक जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद में एक प्रसंग आता है मंडीर वन में। नंद बाबा गोचारण में जा रहे थे, अपने छोटे से बच्चे को गोदी में लिए हुए भंडीर वन में पहुंचे। देखते देखते काले मेघ आसमान में छा गए, काले बादल छा गए, और बूंदे भी पड़ने लगी। उधर भंडीर वन में तमाल के वृक्ष हरे भरे वृक्ष ऐसे ही काला, और मेघ के छा जाने से और काला गहरा अंधकार जैसा हो गया। धीरे धीरे और बूंदे पड़ने लगी, कुछ आंधी आने लगी। उस समय में नंद बाबा सोचते हैं जब बेटे को मैं कहाँ छिपाऊँ, कहाँ ले जाऊँ, बड़ी जोर से आंधी और वर्षा हो रही है। सोच ही रहे थे इतने में देखा उनके मित्र वृषभानु की बेटी उनके पास में आई, छोटी सी बेटी, और उनके सामने में हाथ ऐसे कर दिया। कृष्ण उसके हाथ से नंद बाबा के हाथ से उसके हाथों में चले गए, और उसने अपने हाथों में ले लिया, और वहाँ से हट करके तमाल वृक्ष इत्यादि की घने वह इसमें कुंजों में छिप गई, और वहाँ पर कृष्ण किशोर बन गए, राधा जी भी किशोरी बन गई। कृष्ण बन गए 14.5 वर्ष के, और राधा जी बन गई 13 वर्ष की करीब, या उम्र के हिसाब से जैसे होता है 8 दिन की कितना 15 दिन छोटी उस रूप में बन गई। और वहीं भांडी बट की छाया में वहाँ पर बैठे, और इतने में ललिता इत्यादि सखियाँ आ गईं, इतने में ब्रह्मा जी आ गए पुष्कर से, क्या कोई आदमी कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा जी आ गए और उनकी उपस्थिति में उन्होंने कहा कि आज ही विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि भविष्यत में लोग कहेंगे कि विवाह नहीं हुआ, इसलिए गंधर्व विवाह भी हो जाना जरूरी है। किन लोगों के लिए? जिनको रस विचार नहीं है, जो रस विचार में अनभिज्ञ मूर्ख हैं, साधारण लोग हैं, विधि का अतिरिक्त और कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने भविष्य में सोच करके ऐसा उनको गांधर्व विवाह कराया। गांधर्व विवाह माने क्या? यदि एक नायिका दूसरे नायक पर लुब्ध हो जाती है, कोई में एक महिला लुब्ध हो जाती है और दोनों प्रौढ़ विचार के हैं, असत चरित्र नहीं है, उस समय में उनका गांधर्व विवाह होता है। केवल माला, वो पहले लड़की देती है माला और पीछे लड़का दे करके और अंगीकार करता है, इस तरह से ये गांधर्व विवाह उन दोनों का संपन्न वहीं पर हुआ। ललिता विशाखा इत्यादि गान करने लगी, कोई पुरोहित बन गई, कोई नाइन बन गई, कोई कुछ करने लगी और इस तरह से वो विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने पर श्रीमती राधिका जी फिर वैसे छोटी बन गई, कृष्ण जी छोटे बच्चे गए, गोदी में ले लिया और नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको हाथों में सौंप दिया, फिर वो बड़े प्रसन्न होकर के अपने घर को लौट गए। एक ये विवरण प्राप्त होता है। व्हाट आई टोल्ड सुटल वेरी क्विकली, कैन यू टेल व्हाट कैन यू डू? तुम बोल सकते हो, यह मैं बतला रहा था कि ब्रह्मा जी ने गांधर्व विवाह क्यों कराया, क्यों कराया? विवाह होने से तो स्त्री पुरुष का व्यापार हो जाता है और उन्नत उज्जवल पारकीय भाव रहेगा नहीं। उन्होंने रस अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिए, साधारण लोगों के लिए जो विधि भक्ति पर अधिक जोर देते हैं, वैदिक संस्कारों पर और विचारों पर अधिक विश्वास रखते हैं, उन लोगों को मुख बंद करने के लिए ऐसा किया। जय हाँ, विवाह हुआ, विवाह तो हुआ है, तुम कैसे करे जो नहीं हुआ? इसलिए यह बात ठीक है कि ब्रह्मा जी ने इसलिए इस काम को करा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यह कराया, किंतु गौड़ीय वैष्णव उसे स्वीकार नहीं करता। कराया ठीक है विधि मार्ग वाले लोगों के लिए, किंतु यथार्थ में यदि विवाह होता तो उन्नत उज्जवल पारकीय भाव नहीं होता और फिर रुक्मिणी और सत्यभामा की तरफ में भी इन लोगों का भी विचार होता। इसलिए गंधर्व विवाह के द्वारा उन लोगों का मुख बंद करने के लिए, केवल वो दिखाने के लिए ये सब किया गया। और भी बहुत सी बातें आती हैं उनके श्रीमती राधिका के लिए, पुराणों में नहीं उपनिषदों में भी, राधा उपनिषद और दूसरे उपनिषद हैं जिनमें राधा जी के संबंध में बहुत बातें की गई हैं, लिखी गई हैं। राधा जी का प्रसंग इसके बाद में कहाँ आता है? ना ना, इसके बाद में कहाँ राधा कृष्ण से मिलन हुआ? हाँ, इसके बाद में तो अब इधर में नहीं है। तब पुराणों में उपनिषद में ऐसा है कि कृष्ण कभी जोगपीठ वृंदावन में थे, बंशी बैठ के थे और उनकी इच्छा विलास की हुई, और विलास की इच्छा होते ही उनके वाम अंग से उनकी ह्लादिनी पराशक्ति प्रकट भई और दाहिने अंग से वो गोपीश्वर महादेव के लिए कहा जाता है जो वो प्रकट हुए। हाँ, किया। तो वो प्रकट हुए, तो राधा जी प्रकट होते ही रा अनुराग के साथ धा धावित हुई कृष्ण की तरफ में, इसलिए उनका राधा नाम हुआ। कृष्ण उनकी आराधना करते हैं, इसलिए कृष्णेन आराधिता इति आराधिका, और इसीलिए वो पर देवता, और वो कृष्ण की आराधना करती हैं इसलिए वो राधा जी हैं। इसलिए श्रीमद्भागवत में भी ऐसा ही लिखा गया, अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर जन्नो विहाय गोविंद जाम अन्यतरः। ये श्रीमद्भागवत में भी इसी प्रकार से लिखा गया है। सुखदेव गोस्वामी के की इष्ट देवी हैं राधिका जी, इसलिए श्रीमद्भागवत में स्पष्ट रूप से उनका नाम नहीं लिया, नहीं तो 6 मास की उनकी मूर्छा हो जाती है, इसलिए नाम नहीं लिया। किंतु किसी न किसी रूप से उनका नाम प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अध्याय में वो जरूर किसी न किसी रूप में उनका नाम जरूर दिया है श्रीमद्भागवत इत्यादि शास्त्र में और पुराणों में, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि में तो स्पष्ट रूप से ही उनका दिया गया है। विशेष तरह से शक्ति शक्ति मतो रभेदः, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। लीला विलास के लिए ही वो प्रकट होते हैं। हमने कल बतलाया था जो हम मनुष्य या पशु पक्षी कीट पतंग हैं, उनकी दृष्टि शक्ति वाक शक्ति मनन शक्ति ये रूप नहीं धारण कर सकती, किंतु कृष्ण की सारी शक्तियाँ रूप धारण कर सकती हैं। विशेष करके पराशक्ति श्रीमती राधिका जी वो रूप धारण कर सकती हैं, इसलिए विलास के लिए ही वो रूप धारण करती हैं। कृष्ण की जितनी भी इच्छाएं हैं समस्त वो पूर्ण करती हैं, इसलिए पुराणों में ऐसा लिखा गया, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मी लक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। कृष्ण देवी कृष्णमयी, देवी माने दिव्यति क्रीड़ति, कृष्ण की सबसे में क्रीड़ा कराती हैं, कराने वाली है और कृष्ण के साथ में क्रीड़ा करती हैं। कैसी? अपराकृत नित्य दिव्य क्रीड़ाएं करती हैं। कृष्णमयी अंतर बाहर सर्वत्र कृष्ण को दर्शन करती हैं, जिसके बाहर में और अंतर में सब समय कृष्ण हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वो उनको कृष्ण नहीं दिखाई पड़ते हैं। कृष्णमयी प्रोक्ता परदेवता राधिका, राधिका माने कृष्ण के द्वारा आराधिता, या कृष्ण जिसकी कृष्ण की जो आराधना करती हैं वो राधिका। परदेवता जब कृष्ण ही जिनकी आराधना कर रहे हैं, कृष्ण तो सबसे पर देवता हैं और वही जब उनकी आराधना करते हैं तो फिर वो पर देवता होंगी, इसलिए वो पर देवता। सर्व लक्ष्मी मई राधिका जी सर्व लक्ष्मी मई हैं। लक्ष्मी का एक तात्पर्य होता है शोभा, ब्यूटी, सौंदर्य, माधुर्य, ये तो है ही हैं, और सारी लक्ष्मियों का, ब्रज की गोपियाँ, पूर की वनिताएँ व कृष्ण की प्रियाएँ, लक्ष्मी इत्यादि सब राधा जी के अंग उपांग या अंश कला प्रकाश इत्यादि हैं, ये सभी हैं। मूल राधिका जी ही हैं, राधिका जी ही इतने सखियों के रूप में, सत्यभामा इत्यादि 16108 महिषियों के रूप में, फिर देवलोक में जो भगवान के अवतार होते हैं उनकी लक्ष्मियाँ के रूप में, सीता जी के रूप में और अवतारों की लक्ष्मी के रूप में, ये श्रीमती राधिका जी का ही प्रकाश है। इसलिए सर्व लक्ष्मी मई सर्वकांति, सर्वकांति माने सारी शोभा और कांति माने इच्छा भी होती, कृष्ण की सारी इच्छाओं की बसती नगरी हैं। राधिका के अतिरिक्त यशोदा मैया, नंद बाबा, श्रीदाम, सुदाम, ये सारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि मैया पिताजी से छिप करके वो गोपियों से मिलते हैं, और गोपियों से भी छिप करके वो किसे मिलते हैं, राधिका जी से। इसलिए राधिका जी ऐसी हैं जो उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, कोई ऐसी कामना नहीं है जिसको वो कोई दूसरा पूर्ण कर सके, केवल श्रीमती जी वो पूर्ण करती हैं। इसलिए कृष्ण की काम की बसती नगरी हैं, कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती हैं, इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं है। कृष्ण की सारी इच्छाओं को कुछ आंशिक रूप में सभी लोग पूर्ण करते हैं। तो सर्वकांति सम्मोहिनी परा, सम्मोहिनी कृष्ण को भी मुग्ध कर देती हैं। कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर हैं, ठीक है, अघटन घटन पटेयसी शक्ति वाले हैं, ये ठीक है, किंतु श्रीमती जी रूप में, गुण में, माधुर्य में, सेवा में, ये कृष्ण के भी गुरु हैं, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, कृष्ण स्वयं ही ऐसा स्वीकार करते हैं। इसलिए सम्मोहिनी परा, इसलिए सम्मोहन करने वाली पराशक्ति हैं, लादिनी शक्ति हैं, कृष्ण से अभिन्न है, इस तरह से शास्त्रों में बतलाया गया। और भी बतलाया गया, राधा जी का तत्व कौन जानेगा, इसी के लिए बतलाया, अनाराध्य राधा पदम भोज धूली अनाश्रित बिंदाटवी तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधो रसास्यावगाह। राधा जी की बिना आराधना के कोई भी राधा जी का तत्व नहीं जान सकता, कोई भी श्याम सिंधु रस में डूब नहीं सकता। श्याम सिंधु रस किसको कहते हैं, किसको, कृष्ण आनंद का आस्वादन करने वाले हैं, और कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा की अगाध समुद्र श्री राधिका जी हैं, जिसमें कृष्ण डूब उतर सकते हैं। इतना प्रेम का सिंधु राधा जी के हृदय में है, या राधा जी प्रेम के समुद्र हैं, अनंत असीम, ये श्रीमती राधिका जी हैं। इसलिए श्याम सिंधु कहने से राधा जी का प्रेम रूपी समुद्र यहाँ पर बतलाया गया, जो कि मादन मादन तक वो स्नेहमान प्रणय इत्यादि से लेकर के वो सारा वहाँ पर है, जिसमें कृष्ण प्रेम में मग्न हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, ऐसी ये श्रीमती राधिका जी हैं। तो इस प्रेम में कौन डूब सकता है, जो राधा जी की आराधना करने वाली है। राधा जी की आराधना सहज नहीं है, कृष्ण की भी आराधना सहज नहीं है, किंतु उनसे भी कठिन है। इसी से समझो, जो कृष्ण ही जिनकी आराधना करते हैं तो वो कैसी आराधना होगी। आराधना किसको कहते हैं, राध धातु का तात्पर्य क्या, प्रतिविधान करना, इसलिए प्रीति विधान करने का नाम है आराधना, अर्चन इत्यादि से तात्पर्य नहीं है। इसका एक बाह्य रूप है, इसका असल रूप क्या है, जैसे प्रीति हो, जैसे गुरु को वैष्णवों को प्रीति हो हमारे उस काम से, उसको कहते हैं आराधना। राधा जी आराधना की प्रतिमूर्ति हैं, विग्रह हैं, तो इनकी आराधना कैसे होगा, यदि कोई रूपानुगत्व में आए तो हो सकता है। रूपानुगत्य सहज है, रागानुगा कुछ सहज हो सकता है, किंतु रागानुगा भी सहज नहीं है। जब कोई रूपानुग में आएगा तो वो उनकी आराधना रूप गोस्वामी इत्यादि के अनुगत्य में कर सकता है, अथवा वृंदावन, वृंदावन धाम है जहाँ पर राधिका जी के चरण सर्वत्र पड़े हैं कृष्ण के साथ साथ में। भांडीर भट्ट ले लो, वृंदाब्रज मंडल 84 के श्लोल, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन, वृंदावन धाम, सर्वत्र रास लीलाएं उनकी हुई है, कृष्ण के साथ में उन्होंने क्रीड़ा की है, इसलिए वृंदावन में उनके चरण कमल हैं सर्वत्र। उस वृंदावन भूमि को जहाँ पर कि राधा जी के चरण कमल हैं, उसकी जिसने आराधना नहीं की, उसका आश्रय नहीं लिया, अर्थात वृंदावन में नहीं रहा, कैसे अपराकृत रूप में रहे, केवल ये स्थूल शरीर से नहीं, स्थूल शरीर से भी और अपने अपराकृत शरीर से वह वृंदावन का कोई आश्रय करे तो उनकी धूली कणाओं से भी राधा जी की कृपा उस पर हो सकती है, उनकी कृपा होने से राधा जी की ये सब महिमाएं समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तां, गंभीर चित्त वाले जो रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके परिकर लोग हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी गोस्वामी, और अब तक के भक्ति विनोद ठाकुर महोदय तक, या गुरुपाद पद्म इत्यादि, श्रील प्रभुपाद इत्यादि, ये गंभीर चित्त वाले हैं, इनका सत्संग नहीं यदि किया, इनकी सेवा नहीं की, उनके अनुगत्य में भजन नहीं किया, उनसे श्रवण नहीं किया, तो श्याम सिंधु में अवगाहन करने का कभी भी सुयोग नहीं हो सकता, इस चीज को समझ रखो। ऐसी ये श्रीमती राधिका जी हैं, कहना एक है और अनर्थग्रस्त होकर के इसको कहना एक बात है, उसका फल अधिक नहीं होगा। और जो व्यक्ति इसका अनुभव करते हुए, जितना अनुभव करके ये बतलाएगा या सुनेगा या नहीं कहेगा, तभी उसके निकट रहने से ही अपने आप ये चीज़ें प्रकाशित हो जा सकती हैं। इसलिए शास्त्रों में बतलाया गया, प्रबोधानंद सरस्वती जी ने उनकी कैसी प्रार्थना की है, जस्या कदापि वसनांचल खेलोनत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमान जोगेन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि विश्वभानु दिशेपि। श्रीमती राधिका जी ने कभी मान किया, और कृष्ण मना रहे हैं किंतु मानी नहीं, बहुत प्रबल मान हुआ। आज कृष्ण की बंसी भी हार गई, वो भी हार गए, सोच रहे जे मैं क्या करूं। तो जस्या कदापि वसनांचल खेलोनोत्थ, हवा आ रही है जिधर राधिका जी खड़ी हैं मानकर, कुंड के उस पार, और कुंड के इस पार में हैं राधिका जी, कृष्ण हैं, तो राधिका की तरफ से हवा आ रही, तो वो आने पर कुंड की हवा सुशीतल और सुगंधित कमलों का और पेड़ जो हैं कदम्ब इत्यादि के, उसके सुंदर परागों से भरा हुआ वो जो हवा थी, और उसने राधा जी के वस्त्रांचल को स्पर्श किया। उससे क्या हुआ, राधा जी के वस्त्रांचल में का जो उनके अंगों का गंध है, और उस शीतल मधुर वायु से जब स्पर्श हो करके और भी चौगुनी हो गई, और उससे कृष्ण के अंगों में जो उसका स्पर्श हुआ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमान, वो जो पवन था धन्याति धन्य हो करके राधा जी कांचलों का स्पर्श कर जब कृष्ण को स्पर्श किया, तो कृष्ण कृतार्थ हो गए, राधिका जी ही मानो मिल गई। तो उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ, राधिका जी को प्रणाम नहीं कर सकता, हमारी शक्ति नहीं है, मैं उस दिशा को प्रणाम कर रहे हैं जिधर में वो राधिका है। कृष्ण भी ऐसा कर सकते हैं, हम लोग तो कह सकते ही हैं, कृष्ण भी कर सकते हैं, मैं उस दिशा को प्रणाम कर रहा हूँ जिधर में श्रीमती राधिका जी, श्रीमती जी खड़ी हैं। जब ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख आलक्षितो न सहसा पुरुष तस्य सद्यः वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तंग राधिका चरण रेणुम अनुस्मरण। राधिका जी के चरण की धूली कणा को की वंदना करता हूँ दूर से, उस धूली कणा की वंदना भी, धूली रेणु कणा की भी वंदना करने योग्य नहीं हूँ। वो रेणु कैसी है, राधिका जी के चरण की रेणु है तो वो राधिका जी के समान ही शक्तिशाली होगी, वो भी पाना सहज नहीं, बहुत कठिन है। तो मैं उस धूली कणा को दूर से प्रणाम कर रहा हूँ, किस लिए, जब ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख, देखो यहाँ पर भीष्म जी का भी नाम आ जाता है, रसिकों में भी आया ना, जब ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य आदि, ऐसे जो मुख्य लोग हैं, रसिक लोग भी हैं, किंतु आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, कृष्ण का ही दर्शन अपने ध्यान में नहीं कर पाते हैं ये सभी लोग, तो राधिका उनकी जो आराध्या राधिका जी हैं उनके लिए तो बात ही क्या है। किंतु ऐसे जो कृष्ण हैं राधिका जी के चरण की रेणु के स्मरण करने से ही वशीभूत हो जाते हैं, आराधना तो दूर बात है, उनके चरण की धूली की को स्मरण करने से ही कृष्ण क्या करते हैं, अपने को दे देते हैं। यदि ऐसा कोई हो, सहज भी है कठिन भी है, इतना विश्वास होना भी कठिन है, हम लोग तो रोज ही सुनते हैं किंतु आता नहीं, हृदय निर्मल नहीं होता। इसलिए और भी प्रबोधानंद सरस्वती करें, तस्यापार सार विलास मूर्ति रानंद कंद परमात्म सौख्य लख्या ब्रह्मादि दुर्लभ गते विश्वानुजाया तत्कर जमेव मम जन्मनी जन्मनी, जन्म जन्म में मैं उनकी किंकरी की अनुसेविका की दासी की दासी की दासी बन जाऊं, अनुदासी बन जाऊं, ऐसी ये प्रार्थना करती हूँ प्रबोधानंद सरस्वती जी, क्योंकि उनकी महिमा को ये समझते हैं, जो महिमा को नहीं समझते ऐसी प्रार्थना वो कर नहीं सकते, जो लोग समझेंगे वही कर सकते हैं। गुरु के वचन पर विश्वास हो, गुरु की विषम रूप में सेवा करने वाला हो, उनके अनुगत्य में भजन करने वाला हो, तो कृपा करके गुरुदेव ये शक्ति संचार कर सकते हैं कि ऐसी भावना हृदय में उठे। तो तस्या अपार रस सार विलास मूर्ति, राधिका जी क्या हैं, रस सार, और कृष्ण की विलास मूर्ति हैं, राधा जी ना रहे तो निर्विशेष ब्रह्म बन जाएं, इसलिए वो सार रस सार का जो विलास मूर्ति है वो श्रीमती राधिका, तस्यापार सार विलास मूर्ति हे मूर्ति श्रीमती राधिके विलास मूर्ति आनंद कंद परमाद्भुत सौख्य रस्य, सौख्य मैंने क्या, सेवा के द्वारा कृष्ण की प्रति विधान करने वाली ऐसी श्रीमती राधिका जी विलास की मूर्ति हैं। ब्रह्मादि दुर्लभ गते, ब्रह्मा आदि मैंने वही ऊपर वाले जितने हैं सभी, जब सब जितने हैं ऊपर वाले सब के लिए दुर्लभ, ध्यान में भी मिलना दुर्लभ, उनकी चरण की धूली ऐसी श्री राधिका जी हैं, चरण रेणु यही है ना, कंकर जमेव मम जन्मनि, जन्म जन्म में उनकी किंकरी बन सकूं, यही प्रार्थना हम करते हैं। रूप गोस्वामी ने कह दिया, हा देवी काकु भर गदगदयाद्यवाच जाचे निपत्त भूवि दंडवत उद्वटारती अस्य प्रसाद मुद्धस्य जरस जनस्य कृत्वा गंधर्विके तौ गणी गणनांदिनी। हे विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका, मैं बहुत अयोग्य हूँ, मैं किंकरी होने योग्य नहीं हूँ, अबुद्धस्य मूर्ख हूँ, कोई भी योग्यता नहीं, अनर्थों से ग्रस्त हूँ, तो भी मुझे अंदर में ये लोभ हो रहा है कि आप कृपा करके बिना किसी गुण का विचार किए हुए अपने दासियों के लिस्ट में हमारा भी नाम लिख दीजिए, मैं भी एक आपकी दासी हूँ। कैसी ये सब प्रार्थनाएं करते हैं। वंशी करान निपतिता स्कलितम शिखंडम प्रश्नंच पीदवसनम ब्रजराज सुनो जस्या कटाक्षरघात विमुच्छितस्य तंग राधिका परिचरामि कदा रसेन, रस के साथ में रूपमंजरी जैसे उनके अनुगत्य में कब मैं विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका जी की सेवा करूंगा, इसलिए जिसके कटाक्ष से कृष्ण के हाथों की मुरली नीचे गिर जाती है, उनके पीत वसन स्खलित हो जाते हैं, और यहाँ तक कि वह मूर्छित होकर के कृष्ण गिर जाते हैं, इसका प्रसंग भी आया है किसी जगह इसमें कृष्ण भावनामृत में या गोविंद लीलामृत में, जब कृष्ण उनका दर्शन करते हैं बस मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं, उस समय मधुमंगल उनको किसी प्रकार से धैर्य धारण करा करके उनको स्थिर करता है। इसलिए ऐसी श्रीमती राधिका जी हैं, परिचरामी कदा रसेना रसपूर्वक उनकी कब सेवा करूंगी, रसपूर्वक कैसी, शिरूप मंजरी करार्चित पाद पद्म कोश्चंद्र नंदन भुजार्पित मस्तिकाया हमोदत कनक गौर पदारविंदम संवाहनानि शनकैस्तवकी। जब आप रासविलास से थक जाएंगे उस समय अपना सिर कृष्ण के गोदी में दे करके आप विश्राम कर रही होंगी और उनके पैरों को रूप मंजरी पलोट रही होंगी और उस समय रूप मंजरी पंखा कर रही होगी। उस समय रूप मंजरी क्या हमारे ऊपर में कृपा करके कहेंगी जे ये थोड़ा सा प्रसाद तुम लो, बजे इधर आ जाओ और जिस पैरों की सेवा कर रही हो वो पैरों की सेवा करने के लिए मुझे नियुक्त करेंगी। ऐसी यह रसमयी सेवा कहलाती है। यत्किं करीष बहुशा खलुकाकवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदारस निधे विश्वानुजाया तत्केली कुंज भवनांगन मार। उनके केली की कुंजों में मैं एक झाड़ू की सीख बन जाऊं जैसे उनके कुंजों में झाड़ू दिया जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन सार्थक हो जाएगा क्यों? अरे उनकी किंग करियां उनकी तो बात छोड़ो, कृष्ण को उनके कुंज में आने से रोक देती हैं और कृष्ण उनकी पहियां करते हैं, पैरों में गिर जाते हैं। कौन? शिखंड मौले, समस्त भगवानों की चरम सीमा वो कृष्ण, उनके सखियों के पैरों में गिरते हैं। तो फिर राधिका जी की तो बात ही क्या है, उनके कुंज में ऐसा मेरा कभी सौभाग्य होगा जैसा हो सकता है। इस प्रकार से हमारे रसिक आचार्यों ने उनकी राधा जी की वंदना की है। आज समय हो गया, आफ्टर सम टाइम आफ्टर आरती ओ दे विल एक्सप्लेन नॉट नाउ, इट विल बी सो लेट।